نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کامیاب شخصیت کے بارے میں آج کچھ مزید باتوں کو ہم دیکھیں گے. اگلی خوبی جو کسی کی شخصیت کو ایک مؤثر شخصیت میں بدلتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کی بنیاد پر معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ دو طرفہ کامیابی کی صورتحال پیدا کرتے ہیں. اس کیفیت کو کہتے ہیں ون ون. یہ کیا ہوتی ہے ابھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. یعنی ان کے ساتھ رہ کر یا معاملات کر کے کسی کو بھی پیچھے ہٹ کر شکست کا احساس نہیں ہوتا. یہ ہے وہ خوبی جو بہت تھوڑے لوگوں میں ہوتی ہے. کیا دو باتیں ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ جو بھی سکلز اور خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوتی ہیں ان کو اپنے معاملات میں یوٹیلائز کرتے ہیں. بعض دفعہ لوگوں کے پاس بڑی خیر ہوتی ہے لیکن جو ہی کسی معاملے میں پڑتے ہیں تو اس چیز کو استعمال کرنا بھول جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ کوئی عورت اپنے گھر میں رکھی ہوئی کسی چیز کو وقت پڑنے پہ استعمال نہ کر سکے. آگے پیچھے اس کو خوب جھاڑے پونچھے صاف کر کے رکھے، خوش بھی ہو کہ میرے پاس یہ چیز ہے لیکن جب وقت پڑے تو استعمال نہ کرے یا بھول جائے. اسی طرح ہر انسان سونے کی کان کی طرح ہوتا ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو صحیح وقت پہ صحیح مقدار میں صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق بھی دے. کیونکہ غلط وقت پہ یا غلط مقدار پہ چیز کو استعمال کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ 120 وولٹیج والی چیز کو 420 میں لگا دیں، برن اپ ہو جائے گی. یا 420 ریکوائرڈ تھا اور آپ 120 میں لگائے اور آپ کی مشین کام نہیں کرے گی. دوسری یہ جو کیفیت ہے نا جس کو ون ون کہتے ہیں، یہ بڑی پیاری خوبی ہے اللہ کی طرف سے جس کو ملے. زندگی میں دو انسانوں کے ساتھ اکثر ہی ٹکراؤ رہتا ہے، مقابلہ کہہ لیں. وہ کھیل کا میدان ہے، اے اور بی کھیل رہے ہیں، یا اے جیتے گا یا بی جیتے گا، دونوں نہیں جیت سکتے. ایون اگر میچ ڈرا بھی ہو جائے گا تو بھی دونوں میں سے خوبی ایک کی زیادہ ہوگی، دوسرا بائی چانس کہہ لے یا اتفاقاً اس کو اللہ نے شکست سے بچا دیا. لیکن کسی انسان کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ ہارنے والے کو ہارنے کا احساس نہ دلائے. بعض لوگ جیت جاتے ہیں لیکن دل کے میدان میں ہار جاتے ہیں، اور اپنی باتوں سے، خوش ہونے کے سٹائل سے، یا اس پہ تکبر میں آ کے دوسرے کو ناکامی کا احساس دلاتے ہیں. سمجھداری کیا ہے کہ جو آپ سے ہارے اس کو بھی نہ لگے کہ میں ہارا ہوں. جس بندے کو اللہ نے یہ خوبی دے دی نا، انشاء اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑے کام کروائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس دل کے اندر آپ کی طرف سے ریگریٹ آئے گا نا، آپ اس بڑے بن گئے، واہ میں جیت گیا، تم ہار گئے، دیکھا نا آج یہ ہوا، دیکھا نا، نہیں آپ نے یہ دکھا دیا لیکن اس کا دل توڑ دیا. اور دکھی دل کے اندر محبت پیدا نہیں ہوتی. آپ جس دل کو تانوں کے تیر لگائیں گے نا، اس دل میں آپ کی محبت نہیں آئے گی. اسی کو شاید کہتے ہیں کل وتھ کائنڈنس. ہم کل تو نہیں کہتے کیونکہ اسلام کلنگ کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ون وتھ کائنڈنس. اگلی خوبی کیا ہے؟ وہ اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر معاملات کو نمٹاتے ہیں. زندگی میں معاملات کی بڑی اہمیت ہے. بہت ساری کتابیں پڑھے ہوئے لوگ، بہت سارے ٹیسٹ دیے ہوئے لوگ بھی عملی پرچوں میں فیل ہو جاتے ہیں. جتنا اخلاق انسان حسن اخلاق کے نام پہ سیکھے، تزکیہ نفس کے نام پہ سیکھے، حقوق العباد کے نام پہ احادیث سنے اور یاد کرے، اس کا عملی اظہار کب ہوگا؟ جب بندہ کسی سے معاملہ کرے گا. تو لہٰذا جب آپ کا کسی سے بھی معاملہ پڑے تو سوچا کرے کیا میں اخلاق کی पाबंदी कर रही हूँ, उससे बड़ी भी बात तो नहीं कर रही। इसी तरह अगली खूबी कि वो इनकिसार के साथ अपने एतमाद का इजहार करते हैं, यानी वो अगर पूरे एतमाद अंदाज से बात करते भी हैं तब भी इनमें तकब्बुर का एहसास पैदा नहीं होता। अब देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें वही हैं जिसको बड़ी गहरी नज़र से देखा जाए तो फिर आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी इनकिसारी तो है, एतमाद तो है, लेकिन तकब्बुर नहीं है। आप तीन लफ्ज़ लिख लें, इनकिसारी, एतमाद और तकब्बुर। इनकिसारी को राइट क्लिक कर दें, चेक करें, यस ओके, पूरे एतमाद होना ठीक है लेकिन तकब्बुर नहीं करना। जब कभी हम अपनी कामयाबियों पे फूले नहीं समाते तो उस वक्त देखना होता है कि क्या हमने इनकिसारी का दामन हाथ से छोड़ तो नहीं दिया। और ये जो पूरे एतमाद होना है ना, बिल्कुल घरेलू मिसाल दूंगी कि बास ख़वातीन अपने खानों की तारीफ़ें करती हैं, अपनी रेसिपीज़ की या अपने घर चलाने की या भी कोई छोटे छोटे मामलात अपने बच्चों की तरबियत की। उस वक्त जो अंदाज़ होता है ना वो इनकिसारी से खाली होता है और तकब्बुर के करीब जाता है। आप ऊपर लिखे पूरे एतमाद, नीचे एक तरफ लिखे इनकिसारी और एक तरफ लिखे तकब्बुर, इन दोनों को बैलेंस करना ही आपकी कामयाबी है। अगर आप अपनी खूबी बयान करते हुए भी तकब्बुर वाले अंदाज से बोलेंगे ना तो दूसरा आपसे इम्प्रेस नहीं होगा। आपने कभी देखा है कि जब कोई इंसान बहुत अपने बारे में बात कर रहा होता है तो दूसरा बंदा घड़ी देखने लगता है, बहुत बातें हो रही होती हैं लेकिन जो ही आपका कोई यानी सेकेंड पर्सन अपनी खूबियाँ बयान करता है तो लोग फिर वहाँ से जाना चाहते हैं या उनका एहसास शुरू हो जाता है कि अब हमें जाना है, और कुछ नहीं तो अनकम्फर्टेबल फील कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी कामयाबियों का तذکرہ करें लेकिन आपके अंदाज़ में आजसी हो। ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह ने मुझे सिखाया, ये अल्लाह क्या है, इसी को कहते हैं ना हाज़ा मिन फ़ज़लिल्लाह, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। इसी तरह अगली ख़ूबी जो इंसानों को वाकई इंसान बना सकती है कि वो फ़ैसलों के अमल दरामत और नतायज के हसूल के मामले में बराबर के शरीक होते हैं। फ़ैसलों के अमल दरामत, सोचिए क्या बात है, यानी कोई फ़ैसला किया है अब उस पर अमल करना है, अब उसके बाद नतीजा कुछ भी निकले, वो अच्छा निकले वो ख़राब निकले, वो साथ नहीं छोड़ते। बाज़ लोग फ़ैसले तक साथ होते हैं, अमल दर आमद हो रहा है तो साथ होते हैं, लेकिन जो नतीजा निकलता है अगर अच्छा निकले तो सबसे आगे उनका हाथ होता है, और अगर खुदा न खासा नतीजा ख़राब निकले तो फिर वहाँ से खिसक जाएंगे या फिर कहेंगे नहीं हमने ये नहीं किया। मिसाल देती हूँ कि कोई खाना पका रहे हैं दो तीन लोग मिलके, अब कोशिश है पकाते हैं ये इतना डालो ये उतना डालो, बिलफर्ज़ वो केक सख्त हो गया, अच्छा नहीं बना, तो क्या करेंगे आप? नहीं मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो कहा था इसमें एक अंडा और डाल दो, या मैंने ये कहा था कि तुम इसको कम टेम्परेचर पे रखना, नहीं फिर साथ रहिए कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, लेकिन आप धोखा तो ना दें, दगा तो ना दें, किसी को तन्हा तो ना छोड़ें। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि जिसको अगर हम वाकई अपनी शख्सियत के नाते से लिख के सोचेंगे और फिर अमल करेंगे तो हमारी वो छुपी हुई बीमारियाँ दूर होंगी जो आम आँखों से नहीं दिखती। जैसे एक बीमारी ज़ाहरी होती है ना, सर में दर्द है या स्किन पे कोई चीज़ निकल आई, लेकिन कुछ बीमारियाँ अंदर होती हैं, आप कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चलता, ये डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है, छोटी छोटी डेफिशिएंसीज हैं कुछ और हैं चीज़ें। लेकिन इसी तरह हमारे अखलाक के अंदर भी कुछ इतनी अनविजिबल किस्म की या इनविजिबल किस्म की बीमारियाँ होती हैं जिसको बाज़ दफ़ा हम ख़ुद भी नहीं जानते, तो इंशाल्लाह हमने इस सफ़र में उन्हीं को डायग्नोज करना है और फिर अपने अंदर से उसको निकालने की कोशिश करनी है। एक और ख़ूबी, वो मुतहर्रिक और काबिल कबूल होते हैं, तब्दील होने वाली सूरत हाल से खुशगवारी के साथ निमट लेते हैं। मुतहर्रिक का मानी क्या है? एक्टिव, हरकत करने वाले, साइलेंट नहीं होते, लेज़ी नहीं होते, बिज़ी होते हैं। ठीक है, और काबिले कबूल यानी उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लोग उनको कबूल कर ले। बाज़ लोग दूसरों के लिए नाकाबिले हज़म होते हैं चाहे उनके अंदर कितनी ही खूबियाँ क्यों ना हो, और तब्दील होने वाली सूरत हाल से खुशगवारी के साथ निपट लेना ये अमूमन बड़ा मुश्किल होता है। लोगों को सबसे बुरी जो चीज़ लगती है ना, वो चेंज लगती है, तब्दीली। आप ज़रा सोचें, आप छोटे से घर से एक बहुत बड़े पैलेस नुमा घर में आ गई, लेकिन वो जो मूविंग के डेज थे वो कैसे लगे? किसी को अच्छे नहीं लगते। इसीलिए ट्रैवलिंग भी अक्सर अच्छी नहीं लगती लोगों को, क्योंकि आप हर लम्हे अपनी जगह को तब्दील कर रहे हैं। लेकिन किसी इंसान के अखलाक का हुसन है कि तब्दील शुदा हालत में भी वो खुशगवार है। यानी जिस दिन घर से सामान उठ रहा है, आप उस दिन भी अपने बच्चों के साथ खुश अखलाक रहें, ये आपकी कामयाबी है। या हालात जैसे भी हैं, फिर भी आप अपनी बीवी के साथ अच्छे मिजाज में रहें, ये चीज़ें इंसान को कामयाब करती हैं। फिर इसी तरह एक और ख़ूबी है, वो अपने नतायज के हसूल को ही अपना इनाम तसव्वुर करते हैं। बस कोशिशों पे अमूमन इंसान को कुछ ज़ाहरी इनाम नहीं मिलता, और ख़ास तौर पे दुनिया में अगर आप अल्लाह के लिए कुछ कर रहे हैं तो बाज़ दफ़ा आपको दुनिया में कुछ इनाम मिलने की बजाय इल्ज़ाम भी मिल सकता है। ऐसे लोग इतने सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि जो नतीजा निकला ना, वो कहते हैं यही मेरा इनाम है। बस आप देखिए कि आप किसी को कुछ सिखा रहे थे और वो सीख गया, उसका सीखना ही आपके लिए इनाम है। आप अब उस पर मज़ीद क्या मांगेंगे? आपने अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम किया और उस काम के नतीजे में कुछ लोगों को फ़ायदा हो गया, यही है आपका इनाम। इसी को कहते हैं बेलॉस कोशिशें। जितनी कोशिशें बेलॉस होती हैं, उतना इंसान अच्छे नतायज पाता है। फिर एक और ख़ूबी कि इनमें जहनी यानी मेंटल और जज्बाती यानी इमोशनल लचक होती है। लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी। इस जुमले को हम कैसे बोलेंगे कि वो मेंटली और इमोशनली फ्लेक्सिबल होते हैं और वो हर किस्म की मुश्किल सूरत हाल से आसानी के साथ निपट आते हैं, आसानी से निमट लेते हैं। ये भी किसी इंसान की बहुत बड़ी खूबी है, अगर अल्लाह उसको अता कर दे कि वो मेंटली फ्लेक्सिबल हो। बस लोगों की घड़ी की सुई एक जगह टिक जाती है, ये नहीं चाहिए। घड़ी कब काम करती है? जब चलती ही जाए। इसलिए इंसान का जहन भी जितना हरकत में रहे, वक्त के साथ बदल जाए, हालात को देख के अपने आप को चेंज कीजिए। आपने कुछ और प्लान किया था, इन वक्त पे मेहमान आ गए, आपने कहीं जाने का सोचा, आपकी गाड़ी काम नहीं कर रही, सो ऑन। जिस तरह की बातें, फ्लेक्सिबल रहिए। इमोशनली भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि लोगों की नाकामियों में बहुत बड़ी वजह उनके इमोशंस होते हैं, और इसको मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। इमोशनली अपसेट पर्सन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता। खुश हुआ तो इतना खुश, उसको पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। गम में गया तो बोलना ही भूल गया, जज्बात में आया तो ये सोचने भूल गया कि जो बात मैं बोल रहा हूँ मुँह से, दूसरे उसको किस तरह सुन रहे हैं। और इस तरह फिर वो इंसान अपने आप को कामयाबियों से थोड़ा सा दूर समझ कर लेता है। फिर इसी तरह वो अपने ग्राहकों यानी कस्टमर्स और मुतल्लकीन से बहुत करीब होते हैं। मुतल्लकीन में जिन लोगों से उनका ताल्लुक़ होता है, और इनकी ज़रूरियात का एहसास और ख्याल रखते हैं। ये भी बहुत अहम बात है, जो लोग आपके अराउंड हो ना, आपको उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए, एहसास रखना चाहिए उनके आराम का, उनकी सेहत का, और उनके साथ बात करते हुए उनकी इज़्ज़त नफ्स का। बाज़ दफ़ा इंसान जब किसी एक ऐसे लेवल पे होता है तो उसको ऐसे लगता है कि सभी उसको यस सर कह रहे हैं, तो वो समझते हैं कि ये सारे मेरे वर्कर्स कह लें या कुछ इस तरह के बन गए कि जिनके ऊपर अब मैं रोब भी डाल सकता हूँ। और बाज़ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप सख्त बात भी करें तो आप डिज़र्व भी करते हैं, लेकिन अच्छा बॉस या अच्छा लीडर कौन होता है कि जो अपने साथ वालों के साथ बहुत नरम हो। यही अल्लाह के नबी की खूबी थी ना, फबीमा रहमत मिनल्लाह लिंत लहुम, तो ये चीज़ उनके अंदर ज़रूरी होती है। अगली चीज़ देखते, वो हमेशा अमल दरामत के लिए तैयार रहते हैं। ये जाहिर करते हैं कि वो काम कर सकते हैं और अपने साथियों को इस काबिल बनाते हैं कि वो नतायज हासिल कर सके। साथियों का नतायज हासिल करना इन अफराद के लिए भी और इदारे के लिए भी कामयाबी का बायस होता है। ये भी बहुत अहम बात है, यानी अमल दरामत के लिए तैयार होते हैं, सिर्फ बातें नहीं करते, जो बात हुई अब उस पे अमल भी करेंगे, और हिम्मत नहीं हारते कि नहीं ये तो हो नहीं सकता, इज़ इम्पॉसिबल, नहीं, वो जाहिर करते हैं काम कर सकते हैं और अपने साथियों की ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई काम एक इंसान अकेला नहीं कर सकता, तो उसके लिए अपने साथ अपनी टीम तैयार करते हैं, फिर उनका मोरल बुलंद करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि वो ना सिर्फ ये कि अफराद की सतह पे कामयाब होते हैं, बल्कि उनके इदारे, उनके इंस्टीट्यूट भी ग्रो करते हैं। इसी तरह एक और ख़ूबी है कि वो हमेशा मकासद, इकदार और अखलाकियात को पेश नज़र रखते हैं। मकासद क्या हैं? गोल्स। इकदार क्या हैं? आपकी कदरें, यानी आपकी जो ट्रेडिशंस कह लें, और अखलाकियात तो आप जानते ही हैं, यानी कभी भी इन तीन चीज़ों से गाफिल ना हो। आप भी अपने लिए नोट करें, कुछ भी करें तो सोचें मेरा मकसद क्या है, इसको किस तरीके से करना है, इसमें मेरा एटीट्यूड, मेरा रवैया कैसा होना चाहिए, फिर कामयाबी होगी। फिर इसी तरह वो अमूमन ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं कि हर फर्द अपने हिस्से का काम कमा हक्कहू करके देता है, यानी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं कि लोग उनके साथ काम करके उसका हक अदा करें, लोगों के लिए फिजिबल किस्म की सरकमस्टांसिस बनाते हैं, ये नहीं कि हालात तो वो बने ही नहीं जो काम करने के थे और उनसे काम की डिमांड कर दी गई। इसी तरह हर काम को संजीदगी के साथ और प्रोजेक्ट बनाकर करते हैं, यानी जैसा काम होता है वैसा ही उसके लिए वैसी कमिटमेंट होती है, और प्रोजेक्ट बना के पेश करते हैं ताकि लोग करने में कोशिश करें और फिर उनको उससे कुछ हासिल होने का एहसास भी पैदा हो, और इसी तरह अपनी ज़ात को रोज़ बरोज़ तरक्की देने की कोशिश करते हैं, मज़ीद सलाहियतों को हासिल करते हैं और अपनी दुनिया भी बनाते हैं और आखरत भी। इनका दफ्तर, कारोबार भी खुशगवार और इनका घर भी पुरसकून होता है। जी, ये नहीं कि पढ़ने बैठे तो घर वाले ही नाराज़ हो गए, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हर दिन कुछ सीखना चाहते हैं, जो बचपन में सीख लिया उसी पे नहीं रहते कि नहीं मुझे तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, नहीं मैं तो ये सीख ही नहीं सकती, खूब से खूब तर की तलाश होती है। इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें जब लोगों में आएंगी तो फ़ायदा होगा, अल्लाह ने चाहा तो अगली नशिस्त में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक कवर करेंगे कि कामयाब शख्सियत की 7 मारूफ आदात, यानी 7 हैबिट्स का ज़िक्र होगा कि क्या बातें हों कि जो एक इंसान को कामयाब कर देती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि कहने वालों और सुनने वालों को इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला खैरी खल्किही व असहाबिही अजमईन, बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन।